दादी जानकी जी से मुलाकात। अच्छा है, उड़ने में होशियार हो गई, जीवन दान मिला है, और जितनी सेवा करते जाते तो जीवन की तंदुरुस्ती और बढ़ती जाती है, क्योंकि सबकी दुआएं तंदुरुस्त बना देती है। बाप की तो मदद है ही, लेकिन दुआएं जवान बना रही है। जब किसको दुआएं मिलती है ना, या कोई भी खुशी शांति की प्राप्ति होती है, तो मुख से, दिल से यही दुआएं होती है कि क्या दुआएं देते एक दूसरे को। जब किसको दुआएं मिलती है ना, या कोई भी खुशी शांति की प्राप्ति होती है, तो मुख से, दिल से यही दुआएं होती है कि भगवान लंबी आयु दे, हमारी और आपको लग जाए और तंदुरुस्त हो जाए, हमारी आयु आपको लग जाए, तुम्हें और क्या दू दिल के सिवा। गीते ना, कार्ड में भी क्या भेजते हैं कि हमारी आयु आपको मिल जाए। तो आप एक चक्र में हजारों की सेवा करते हो, तो यही हजार गुना दुआएं मिल जाती है। अच्छा है, सभी अपनी अपनी सेवा अच्छी करते रहते हो, सभी का दादियों में शुभ मोह है ना, साधारण मोह तो नहीं है ना, दुख देने वाला मोह नहीं, सुख देने वाला, लेकिन जितना मोह उतने ही निर्मोही, न्यारे भी और प्यारे भी, ऐसे है ना कि सिर्फ प्यारे हैं, न्यारे नहीं, न्यारे और प्यारे दोनों का बैलेंस रखने वाले। ये भी ड्रामा में आदि से विशेष आत्माओं का निमित्त बनने का पार्ट है। पालना ली भी बहुत है, जितनी आप लोगों ने पालना ली है डायरेक्ट बाप से, उतनी इन्होंने तो नहीं ली है, तो जितनी पालना ली है उतनी पालना करने का पाठ भी मिला है, तो सब खुश है। हजार साल सभी की आयु बन जाए, हजार साल घर नहीं जाना है, पुरानी दुनिया में ही रहना है। अच्छा है, यह म्यूजियम भी कमाल करेगा। कल कहा था ना, लंदन में स्वर्ग की चाबी के पहले सेवा की चाबी मिल गई। यह है दृढ़ता का प्रत्यक्ष स्वरूप। तो दृढ़ता सफलता के लिए असंभव से भी संभव करा देता है, देती है। हिम्मत वाले हैं तो सभी जो विशेष निमित्त बने हैं उनको विशेष याद प्यार, यह भी सेवा का अच्छा साधन है। कोई ना कोई निमित्त बन अपने अपना भाग्य बनाते हैं। देने वाले पहले ही ड्रामा में नूंदे हुए हैं। अच्छा, तो क्या कह रहे दादी जी से बाबा? अच्छा है, उड़ने में होशियार हो गई है और उड़ाने में भी, जीवन दान मिला है, कुछ हुआ होगा तब, और जितनी सेवा करते जाते हो तो जीवन की तंदुरुस्ती और बढ़ती जाती है, तो सबकी दुआएं तंदुरुस्त बना देती है। यह व्यक्तवाणी में भी ऐसा ही कुछ महावाक्य था ना, बाप यहां सदा रह नहीं सकते, इसलिए क्या इसलिए वरदानों से चला रहे हैं। कहां था ये? बाप यहाँ रह नहीं सकते, बाप यहाँ सदा नहीं रह सकते, इसके लिए वरदानों से चला रहे। भगवान हो नहीं सकता हर समय यहाँ, गीत है ना, भगवान हो नहीं सकता हर समय यहाँ, इसलिए उसने बनाया तुझको माँ। वो माँ के लिए गीत है कि भगवान यहाँ नहीं रह सकता, इसके लिए तुमको बनाया है। तो बाबा कहते हैं कि बाप यहाँ सदा नहीं रह सकता, इसलिए वरदानों से चला रहा है। तो चलाने वाले कौन है? वरदान। तंदुरुस्ती का आधार क्या है? वरदान। तंदुरुस्ती का आधार क्या है? दुआएं। तंदुरुस्ती का आधार क्या है? खुशी। खुशी ही खुराक है, खुशी ही दवाई है। ये दवाई बीमारी को आने नहीं देगी, खुशी ही खुराक है। तो तंदुरुस्ती का आधार तीन है आशीष भाई, एक तो खुशी, दूसरा दुआएं और तीसरा वरदान। ये तीन चीज रहेंगी तो तंदुरुस्ती रहेंगी। दुआओं से ही चलते हैं। जब किसी की दुआएं मिलती है ना, या कोई भी खुशी शांति की प्राप्ति होती है, तो मुख से दिल से यही दुआएं होती है कि हमारी आयु आपको लग जाए।
सच में लगता है?
क्यों नहीं लगेगा? दुआएं जादू का काम करती है, क्यों नहीं हो सकता है? एक की दुआएं नहीं, हजारों की दुआएं। दुआओं की क्वालिटी कौन सी है? एक है ऊपर ऊपर की, एक है दिल से निकलने वाली। निस्वार्थ सेवा से दुआएं मिलेगी, निष्काम भाव से दुआएं मिलेंगी, सच्ची दिल से की हुई सेवाओं की दुआएं मिलेगी, निष्कपट भाव से की हुई सेवा से दुआएं मिलेगी, समय पर सहयोग देने से दुआ मिलेगी, मदद करने से दुआ मिलेगी। ऐसे ही दुआ नहीं मिल जाती है, कीमत चुकानी होती है दुआओं के लिए, त्याग करना पड़ेगा। एक चक्र लगाती है, बाबा ने कहा ना, तो आप एक चक्र में हजारों की सेवा करते हो, पर उस एक चक्र में शरीर जर्जर हुआ जा रहा है, आत्मा में उमंग है, आत्मा की शक्ति परमात्मा शक्ति देह को चला रही है। बीमार है पर क्या कहा था दादी को? बीमार है पर
उपस्थित है, हाजिर
हाजिर है, यज्ञ की मूर्ति है, यज्ञ में एक सैंपल है। तो जब किसकी दुआएं मिलती है ना, या कोई भी खुशी शांति की प्राप्ति होती है, तो मुख से दिल से यही दुआएं होती है कि हमारी आयु आपको लग जाए। कार्ड में भी क्या भेजते हैं कि हमारी आयु आपको मिल जाए। तो आप एक चक्र में हजारों की सेवा करते हो, तो यही हजार गुना दुआएं मिल जाती है। अच्छा है, सभी अपनी अपनी सेवा अच्छी करते रहते हो। सभी का दादियों में शुभ मोह है ना? कौन सा मोह? वो क्या होता है? शुभ मोह। मोह तो विकारों की गिनती में आता है, ये शुभ मोह क्या है फिर?
दोनों के बीच में एक बाबा ही है, जैसे गुर्जर दादी दोनों को दूसरा कुछ मालूम, एक बाबा जो दोनों एक दो को याद करते तो बाबा को ही याद।
साधारण मोह तो नहीं है ना, दुख देने वाला मोह नहीं, सुख देने वाला मोह, ईश्वरीय मोह, परमात्मा मोह, बेहद का मोह, अलौकिक मोह। स्वार्थ नहीं है, जहां पर बीच में परमात्मा खड़ा है, ऐसा मोह। बाकी संसार में जो मोह है उससे तो दुख ही मिलने वाला है। मोह की दो गति, अगर मोह सफल हो गया और मोह असफल हुआ, मोह सफल हुआ तो भी दुख और असफल हुआ तो भी दुख। इसके इसके लिए ज्ञान की सबसे पहली चोट मोह पर होती है। जैसा ज्ञान बढ़ता जाएगा मोह विलीन होते जाएगा। जैसे सूर्य की किरण किसी बर्फ पर पड़ती है तो बर्फ पिघलने लगता है, उसी तरह हृदय में जब ज्ञान का प्रकाश ज्ञान की किरणें आती है तो अंतरतम में बैठा हुआ मोह धीरे धीरे पिघलने लगता है। फ्रोजन मोह वाष्पीकरण वेपोराइज हो जाता है, उड़ जाता है। तो मोह को नष्ट करने की विधि क्या है? अर्जुन का क्या हाल हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में? वैराग आ गया, वो है क्षत्रिय परंतु भाषा संन्यास की बोल रहा है, क्षत्रिय है, उसका स्वभाव ही है युद्ध करना, परंतु क्षणिक मोह उत्पन्न हुआ उसके हृदय में और मोह से उसके अंग अंग शिथिल हो गए, निष्क्रिय हो गया, शक्ति जैसे किसी ने छीन ली। अब तक तो युद्ध की भाषा बोल रहा था, अब तक बदला लेने की भाषा बोल रहा था, परंतु अभी चाहे कितने भी उन्होंने उनके उनमें दोष है परंतु सोचता है ये तो फिर भी मेरे भाई है, पितामह है, आचार्य है, गुरु है, ये सब दिख रहा है उसमें। मोह की जहां उत्पत्ति हो गई वहां पर मोह आंतरिक शक्ति को चूस लेता है। जो व्यक्ति मोहित है, किसी से सम्मोहित है, चाहे सौंदर्य चाहे गुण, वो अपनी शक्ति को खो बैठता है, क्योंकि वहां डर भी होता है वो वस्तु व्यक्ति वैभव कहीं छूट ना जाए। विवेक जड़ हो जाता है, डेढ़ हो जाता है, तर्क बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जिसका जिसमें मोह है उसके आसपास ही उसे विश्व समाया हुआ दिखाई देता है, आसपास की सारी वस्तुएं निरर्थक जान पड़ती है, बस उसी में सब कुछ समाया हुआ है, वही सबसे ज्यादा गुणवान है, वही सबसे ज्यादा सुंदर है, वही सबसे ज्यादा दिव्य है। एक कृत्रिम आभा मंडल तैयार हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के इर्द गिर्द, और वो व्यक्ति उसमें फंस जाता है। तो मोह फंसाता है, मोह दुख देता है, मोह पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, झुलाता है, रुलाता है, झुलाता भी है, बेचैनी उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति मोहित है सम्मोहित है उसके मन पर उस व्यक्ति का डेरा रहता है, उसके अतिरिक्त और कोई विचार नहीं आते, उसके अतिरिक्त और कोई संकल्प नहीं उठते। जैसे मन में ही बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, चालू ही रहता है। जिन्हें महान बनना है उनका कोई दोष नहीं दिखता, वैसा नहीं, सब कुछ उसमें दिखाई देता है और उसका कोई दोष नहीं दिखता है। मोहित व्यक्ति की गति जैसे कोई बंधा हुआ है, बंधक हो जाता है, एक कारागार में बंद हो जाता है, मोह के कारागार में। मोह ऐसा है, फिर भी उसमें अतिशय सुख अनुभव करता है, एकदम बहुत ज्यादा, परंतु उसे भी पता रहता है कि वो उस समय कमजोर है, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी होती है कि अगर वो जिसमें मोह है उसको थोड़ा भी कुछ हो गया तो ये दुखी हो जाएगा। खोने का डर हमेशा ही बना रहता है कि ये कहीं चला ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए, और यदि कोई दुनिया वाले कुछ कहे, आक्षेप ले, विरोध करे तो उनसे लड़ने के लिए भी तैयार है, लोक निंदा का सामना करने के लिए तैयार है, परंतु स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इसमें मोह है। मोह है परंतु क्योंकि ज्ञानी है, क्योंकि योगी है, तो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मोह है। यहाँ बात ज्ञानियों की चल रही है, जो बहुत पक्के है और योगी है उनकी बातें चल रही है, संसार वालों की बातें नहीं चल रही है जिन्हें पता ही नहीं क्या है। यहाँ बात उनकी चल रही है जो मोह के स्वरूप को जानते हैं, जो जानते हैं लक्ष्य है नष्टो मोह बनना है, उनकी बात चल रही है। वो एकदम पुराने और पक्के और संपूर्ण निश्चय बुद्धि जो है उनकी बात चल रही है, जो मोह में जकड़े हुए हैं। मोह बहुत दौड़ाता है, विक्षिप्त कर देता है, चित्त को दुर्बल कर देता है, अंधेरा सा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, कदम ठिटकते हैं, झिझकते हैं, लड़खड़ाते हैं, लंगड़ाते हैं, गिरता है, परंतु जान नहीं पाता कि मैं मोह के बांध से पीड़ित है। जबरदस्त जंजीर है, चेन है, कुछ नहीं करने देती उसे। बाकी सब करेगा, सेवाएं कर सकता है व्यक्ति मोह के साथ, परंतु अध्यात्म पथ में उन्नति नहीं कर सकता। सेवाएं चालू रहेगी, निस्वार्थ निष्काम सब प्रकार की सेवाएं तो चालू रहेगी, परंतु अध्यात्म में ऊंचा उठ जाना, स्थिति को ऊपर ले चले जाना, ये नहीं हो सकता है। लाइट हाउस बन जाना वो नहीं हो सकता है। परमात्मा प्रेम में खो जाना, एक तुनीर में दो तलवार, एक तुनीर में दो बान, या एक उसमें मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, कोई एक ही रहेगा, काम या बाप, बाप या बात, राम या काम, दो एक साथ नहीं रह सकते। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तुलसीदास ने लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में जितनी व्याधियां है, जितने रोग है, उसका मुख्य कारण मोह है। मोह से मुक्त नहीं हुई है आत्मा, कहीं ना कहीं व्यक्ति वैभव, कल का वरदान था ना, का आकर्षण रहता है। बाकी और भी बताए थे, उसमें था एक व्यक्ति और वैभव, वैभव को हटाओ, व्यक्ति, व्यक्ति में आकर्षण, गुणों में आकर्षण, किसी एक में विशेष भावना होना, संडे की मुरली, ये क्या है, हद है, हद में ही नुकसान है। एक में विशेष भावना होना, भक्त बन जाना, भाववान हो जाना, गुणों पर न्योछावर हो जाना, ये श्रेष्ठ भावना रखना नहीं है। तो यहां बात चल रही है साधारण मोह, तो मोह आत्मा को पीड़ित करता है, त्रासित करता है, दुखी करता है, भटकाता है, एक स्वप्न का जगत निर्माण करता है जिसमें केवल दो ही व्यक्ति रहते हैं, वो और जिससे मोह है, वो किसी और ने उसमें प्रवेश करने की हिम्मत की, उसे और ज्यादा पीड़ा होती है, परमिशन नहीं है उधर आने की। मोह का जगत, उसका मोह देहत का है, उसका मोह अलौकिक है, वो प्रेम को मोह का नाम दे रहा है। उसका जो मोह है वो मोह है ही नहीं, क्योंकि उसमें स्वार्थ ही नहीं है। संसार में जो भी मोह है उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ चाहिए, आसक्ति का कारण भी कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा है, देह के सुख की प्राप्ति की इच्छा है, किसी स्वार्थ की पूर्ति की इच्छा है। संसार में जो भी है सब स्वार्थ पर आधारित है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। संसार में जो भी है वो स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम थोड़ी है संसार में। सुर मतलब असुर के विरुद्ध में, सुर देवता, वो तो संसार का गायन है। सुर नर मनुष्य मुनि साधु संत सब लोग, सबकी यह रीति, सबकी एक ही रीति है, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। संसार में जो जिसे वो प्रेम की संज्ञा देते हैं वो वासना है, अपनी वासनाओं को प्रेम नाम से संबोधित करते हैं।
प्रेम।
प्रेम उन्हें पता ही नहीं क्या है। प्रेम का देह से कोई संबंध नहीं है। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। संसार में जिसे वो प्रेम कर रहे हैं वो देह की कामना के इर्द गिर्द घूमता है। बाकी ईश्वरीय प्रेम जो है, प्रेम का तो उनको पता ही नहीं प्रेम क्या होता है। उसको एक दूसरे के साथ जो प्रेम करते हैं वो उसको प्रेम कहते हैं, पर वो प्रेम नहीं है। प्रेम केवल एक ही होता है, परमात्मा के साथ। बस वो अपने मोह को, आसक्ति को, इंग्लिश में शब्द है इन्फैचुएशन, मोहित हो जाना संपूर्ण, कंप्लीट कैप्चर ऑफ द माइंड बाय वन पर्सन, ऑब्सेशन हो जाना, इसको प्रेम का कहते हैं। सब स्वार्थ पर आधारित है, भोग पर आधारित है, वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम ईश्वरीय प्रेम ही प्रेम है। संसारिक प्रेम जो है वो मोह है, और वो तो दुर्गुण, वो विकार है। प्रेम तो ईश्वरीय अभिव्यक्ति है। प्रेम और मोह अलग अलग चीजें हैं। प्रेम तो परमात्मा प्रेम का सागर है, मोह का सागर नहीं है। दुनिया के मनुष्य तो मोहित होते हैं, वो तो एक दुर्गुण है, अवगुण है। इसके लिए दुख देने वाला मोह नहीं। संसार में जो भी मोह है वो दुख देने वाले है। तुम मेरे और मैं तुम्हारा, बस ये प्रेम की परिभाषा है। हम दोनों ठीक रहना चाहिए, जो जिसका हमारा परिवार ठीक रहना चाहिए, बस। हमारे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी दुनिया में जो हो रहा है होने दो। किसी माँ को कोई कहता है कि अरे तुम्हारे बेटे का की दुर्घटना हुई है, वो भाग भाग के जाती है, इतनी रोती है, भागती है, रोती है, बिलखते हुए इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, कहाँ हुआ, वो पूछती है किसका है, वो कहते हैं एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, वो ढूंढती है कहाँ है वो बच्चा, पूछती है लोगों से कितने साल का है, बोलते बस 5-7-8 साल का होगा, उसका भी बेटा 7-8 साल का है, दिखने में कैसा है, बस थोड़ा गोरा है, बोलते मेरा भी बेटा गोरा था, और देखती है एक जगह भीड़ लगी हुई है, जाती है देखती है, सब इधर करती है, और बच्चे को देखती है, मेरा नहीं है, चैन की सांस, किसी और का है, और फिर कहती है मेरा मेरे बेटे से निस्वार्थ प्रेम है। क्या इसे प्रेम कहेंगे? मोह है। प्रेम कभी दुखी नहीं करता है। प्रेम तो ईश्वर की अभिव्यक्ति है, प्रेम का सागर। प्रेम कभी दुखी नहीं करेगा। अगर दुख हो रहा है तो वहां मोह है। प्रेम में कभी दुख हो ही नहीं सकता है। प्रेम क्योंकि निस्वार्थ है, सर्वोच्च होता है प्रेम। तो सभी का दादियों में शुभ मोह है ना, साधारण मोह तो नहीं है। दुख देने वाला मोह नहीं, सुख देने वाला मोह। लेकिन जितना मोह उतने ही निर्मोही। ये तो दादियों के लिए कह रहे पापा, हमारा दादियों से न्यारे भी और प्यारे भी, ऐसे है ना, या सिर्फ प्यारे हैं, न्यारे नहीं, न्यारे और प्यारे दोनों का बैलेंस रखने वाले। किसी को न्यारेपन की ज्यादा बातें बताओ तो तुरंत उत्तर आता है कि बाबा ने कहा है न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखना चाहिए। किसी को ज्यादा एकांत की बातें कहने लगो तो बाबा तुरंत उत्तर आता है कि संगठन का महत्व कितना है। किसी को थोड़ी वैराग की बातें सुनाने लगो कि तुरंत उत्तर आता है कि बाबा ने सन्यासी बनने के लिए नहीं कहा है। किसी को थोड़ा तपस्या की बातें बताओ तो तुरंत उत्तर आता है कि हठयोगी बनने के लिए नहीं कहा है, सहज योग है। उत्तर बाबा सबके पास तैयार है, पर एक बात भूल रहे हैं, बैलेंस अर्थात दोनों चीजें समान चाहिए। प्यारेपन का अभ्यास जितना है क्या उतना न्यारेपन का अभ्यास है? भोजन खाने का जितना अभ्यास है न खाने का उतना अभ्यास है? बैठकर तपस्या करने का जितना अभ्यास, चलते फिरते तपस्या करने का जितना अभ्यास है, क्या उतना ही अभ्यास बैठकर करने का है? इस वाक्य कहने का अधिकारी वही है जिसके पास दोनों अभ्यास है। जिलेबी खाने में जो आनंद होता है वही सुखी, रोटी और दाल खाने में अगर आनंद आ रहा है तो भले खाओ, स्वाद की बात है। हाँ, कद्दू, ज्वार, करेला, गवार, ये जो भी है, ये जो भी, इन सब में समान आनंद है। यहाँ ये नहीं कह सकते फिर, बैलेंस अर्थात दोनों ही चीजें समान हो। आसक्ति तो बहुत है, पर क्या अनासक्ति का उतना अभ्यास है? राग तो बहुत उत्पन्न कर लिए, क्या विराग का भी उतना ही अभ्यास है? संगठन में तो बहुत कर लिया, क्या एकांत का भी अभ्यास है? बोल तो बहुत लिया, क्या मौन का भी अभ्यास है? आज भी सेंटरों पर कई बहने एक दिन तो मौन रखती है। मन का मौन हायर स्टेप है, उसका चालू होता है पहले मुख से। मुख से तो करेगा ही ना। एक है स्थूल एकांत, स्थूल एकांत भी मदद करता है, स्थूल मुख का मौन भी मदद करता है। क्योंकि हमारी अगर शक्तियां देखो तो सारे दिन भर कहां नष्ट हो रही है? बोलने से। जितना हम बोलते हैं उतनी जरूरत नहीं है। जगदीश भाई ने कभी एक किताब में लिखा है ना, जितना तुम बोलते हो अगर उसकी सारी सीढ़ी बनाई जाए तो पूरा ओम शांति भवन भर जाएगा, इतना तुमने बोला है जीवन भर। तब तो सीडी थी या कैसेट थी? कैसेट, सीडी नहीं, कैसेट, कैसेट बोला था। जितना तुमने बोला है सारा रिकॉर्ड कर दिया जाए और सबकी सीडी बनाई जाए तो ओम शांति भवन कम पड़ेगा इसके लिए। हाँ, अगर समर्थ है तो बस वो जो छोटा कमरा है ना ऑडियो वाला, ट्रांसलेशन वाला, बस उतना। अगर व्यर्थ है तो पूरा ओम शांति भवन भर जाएगा। हाँ, कल भी बोला था ना, कितना व्यर्थ जा रहा है। तो बैलेंस अर्थात उधर का अभ्यास कम है, इधर का ज्यादा है। मोह का अभ्यास ज्यादा है, निर्मोह का अभ्यास कम है। उस अभ्यास को भी बढ़ाना है। तुरंत किसी को कहा जाए तो तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं श्रीमद की काटने के लिए, जो तुमने कहा। इसके लिए किसी को बताने की बात नहीं है, खुद करने की बात है। ऐसे है ना कि सिर्फ प्यारे है, न्यारे नहीं। भगवान देखो प्यार का सागर है, पर न्यारेपन का भी सागर है वो। जब उसके जाने की बारी आती है तो रुकता नहीं है, देखता नहीं है, एक सेकंड में ऐसा उड़ जाता है कि बस। सोचो हम कहीं गए मित्रों के साथ बैठे तो एक घंटा बैठने के बाद लगता है और भी थोड़ा बैठना चाहिए, थोड़ा और बैठो, थोड़ा और बात करो। अच्छी लहर चल रही है, सारे झूम रहे हैं, गा रहे हैं, पार्टियां, ये वो, आहा। पर उसको कभी कभी तो बीच से ही बिना बताए निकल जाता है। तो जैसे मैं इस तन में रहता हूँ वैसे तुम भी उस तन में रहो। जैसे मैं इसमें आता हूँ तुम भी ये समझो कि इस तन में आए हुए हो।
गीत शुरू
करेंगे। कौन सा गीत? अच्छा। इसके लिए बाबा न्यारा है, इसके लिए वो प्यारा है। जो संपूर्ण अनासक्त है वो संपूर्ण अनासक्त है, इसके लिए सबको आकर्षित करता है। अगर वो कहने लगे कि नहीं मैं यहीं रुकता हूँ तो देखना हॉल खाली हो जाएगा थोड़ी देर में। वो कहेगा मैं कल सुबह जाऊंगा 6 बजे, लोगों को चिंता हो जाएगी। हाँ, तो इसके लिए वो जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। नहीं तो वो बोलेंगे अभी 10 दिन में यहाँ रहता हूँ, मेरा प्रोग्राम है। लोग बोलेंगे अरे भाई तुम बैठो, हमारी ड्यूटी है, नौकरी है, देखेंगे बाद में, मिलते रहेंगे, फोन से देख लेंगे। हाँ, तो ये भी ड्रामा में आदि से विशेष आत्माओं का निमित्त बनने का पार्ट है। पालना बहुत ली है, जितनी आप लोगों ने पालना ली है डायरेक्ट बाप से उतनी उन्होंने तो नहीं ली है ना। तो अब पालना देने का समय है। बहुत पालना ले ली, दादियों से पालना ली, अव्यक्त बाप दादा से पालना ली, किसी ने साकार में पालना ली, अभी क्या लेते ही रहोगे क्या? अभी देने का समय है, अभी दे दो। जो नए आए उनको कहाँ अनुभव है कोई भी चीज का? वो तो आए ही सीधा 20,000 की सभा में, आगमन ही वहां किया है जहां भगवान दिखता ही नहीं है। खाली आते हैं तो मुरलियां चलती है, ताली बजाओ, हाथ खड़ा करो, उनको ये पता ही नहीं है ऐसे भी कुछ चला था कभी, उनको पता भी नहीं है ऐसे कुछ राज ऐसे खोले थे, ऐसा एक भी मनोविज्ञान का सिद्धांत नहीं है जिसके ऊपर बाबा ने प्रकाश नहीं डाला, एक भी ऐसा जीवन की समस्या नहीं है जिसके बारे में बताया, सूक्ष्मते सूक्ष्म भावों की चर्चा हुई है, एक एक वृत्ति एक एक दृष्टि कृति कर्म सिद्धांत सब चीजों को बाबा ने खोल कर रख दिया है। पर वो जब आ रहे हैं 20,000 की सभा में आ रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखता उनको, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बस यही उनके लिए ज्ञान है। अभी ऐसी आत्माओं को पालना देना पड़ेगा। किसी ने पूछा था ना शीलू बहन जी को एक बार, बाबा अधर भगवान आ रहा है ना तो कुछ तो होना चाहिए ना, चमत्कार जैसा कुछ ऐसे थोड़ी बिजली वगैरह ये हो जानी चाहिए, या फिर कम से कम डायमंड हॉल का क्रैक तो हो जाना चाहिए वो, जब भगवान सर्वशक्तिमान। तो उन्होंने कहा था वो हर बार रिपेयर कौन करेगा। कम से कम क्रैक तो हो जाना चाहिए, जब भगवान आ रहा है परम सत्ता धरती पर, कुछ भी नहीं होता है, कमाल है भगवान की। पहले कम से कम पहले तो झटके उटके लगते थे, अभी तो वो भी खत्म हो गए, कुछ नहीं अभी सीधा पूछना पड़ता है आप आ गए। हाँ बस आएगा दृष्टि घुमाएगा और चले, बोलने का कुछ है ही नहीं, अब क्या बोलूं, अरे कितना है ये एक एक मुरली में कितनी राज छिपे हुए हैं, एक एक पार्टियों से मुलाकात देखो, इतनी सूक्ष्म अति सूक्ष्म बातों का वर्णन किया हुआ है बाबा ने, अभी क्या क्या सिखाते ही रहेंगे क्या, कब तक। हजार ये किसने कहा पता नहीं, 1,000 साल सभी की आयु बन जाए, कुछ ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है, क्या सभा वालों ने कहा कि बाबा खुद कह रहे हैं 1,000 साल, घर नहीं जाना है, देखा यहाँ इधर की महिमा करते तो तुरंत वैराग की बात, घर नहीं जाना है पुरानी दुनिया में ही रहना है, और कहो बाबा को कि बाबा विनाश कब होगा, तो ये पूछते हैं ना बच्चे, अच्छा तो तुम चाहते हो कि बाप चले जाए। हाँ सत्यु का लाने में भी वही था, तो ये इधर की बातें ज्यादा की तो तुरंत बाबा की बात दूसरा पॉइंट तैयार है। अगर कहो कि संगम युग बहुत अच्छा लगता है, घर नहीं जाना है पुरानी दुनिया में ही रहना है, अच्छा बाबा कब आएगा सत्युग, क्या बाप सोचते हो बाप चले जाए, मतलब तुम पूछ रहे हो कि बाबा आपको कब जाना है,
दोनों
बस। अच्छा है ये म्यूजियम का हो गया। फिर चंद्रमणि दादी से, ये भी चक्र लगाकर आइए, चक्रवर्ती राजा में नाम पक्का हो गया है ना, अच्छा है सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है, नाम तो नहीं लेंगे ना कि ये है, लेकिन सेवा स्वयं में प्रत्यक्ष कर रही है। कितने चक्रवर्ती राजा तैयार हो रहे हैं, एक चक्र में अनेक आत्माएं संतुष्ट हो जाती है तो उस चक्र में चक्रवर्ती राजा का वरदान होता है, एक चक्र, जहां से भी कोई जाता है तो 10 दिन 15 दिन 1 महीना जाता है तो कितनी सेवाएं करके आ जाते हैं, तो कितनी आत्माएं संतुष्ट होती है, बहुत होती है, जितनी आयु बढ़ती जाती है उतना ज्यादा चक्र लगाते हैं दादी जी से। अभी मेले का सोच रही है, दिल्ली और बॉम्बे के भी बैठे हैं ना, कमाल करके ही दिखाएंगे, दिल्ली और बॉम्बे निमित्त है ना, स्थापना के भी निमित्त है, तो दिल्ली और बॉम्बे प्रत्यक्षता के भी निमित्त है, ऐसे ही विदेश में लंदन स्थापना के भी निमित्त और प्रत्यक्ष करने के भी निमित्त, अच्छा चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, मुरली तो याद है ना कौन सी चल रही थी, फरिश्ता देवता 3 स्वरूप, इतनी बड़ी मुरली है कि टॉपिक कहाँ था, तो देखो बाबा कैसे समराइज कर लेते हैं सारा, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूपों के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावन हार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों से संपन्न कल बोला था ना, तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है, बाप को भी, बाप भी पंडर खाते हैं, तुम बच्चों को खुशी नहीं होती, देखो वो अभोक्ता है फिर भी क्या खाने में मजबूर कर दिया उसे वो अभोक्ता है फिर भी बाबा कहते तुमको खुशी क्यों नहीं होती, बाप वंडर खाते हैं, वैसे तो कुछ और नहीं खाता है वो, वंडर जरूर खाता है, अविनाशी रोजे चलते हैं उसके, परंतु हम उसे इतने शक्तिशाली है कि उसको भी रोजा खोलने को मजबूर करते हैं और उसको कौन सी पार्टी देते, इफ्तार तो बाप भी वंडर खाते, इनको खुशी क्यों नहीं होती, क्या करूं अब मैं। सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाली, कर्मयोगी आत्माओं को, वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और क्रिसमस की मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।